हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर 7 वर्स नंबर 15। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। यदि इस श्लोक को हमने समझ लिया तो हमें अपने जीवन का मकसद समझ में आ जाएगा। कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, नामं दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम माययापहृत ज्ञान आसुरं भावमाश्रिताः। नामं दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृत ज्ञान आसुरं भावमाश्रिताः। नमं दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृत ज्ञान आसुरं भावमाश्रिताः। क्षमा कीजिएगा, आज मेरा गला इतना ठीक नहीं है। वैसे शास्त्र कहता है, जो जीव नरक से आते हैं उनकी वाणी बहुत कठोर होती है, और मैं मानती हूँ कि नरक ये जीव हूँ, इसलिए बहुत कठोर शब्दों का भी प्रयोग करती हूँ। लेकिन आज तो गला भी साथ नहीं दे रहा है, लेकिन ये मेरी सेवा है। कृपया आप सबको मेरी आवाज के कारण जो कष्ट पहुंच रहा है उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। एक बार फिर से श्लोक को देखिए, नामं दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृत ज्ञान आसुरं भावमाश्रिताः। शब्द का अर्थ, न मतलब नहीं, माम मतलब मेरी, दुष्कृतिनो अर्थात दुष्ट, मूढ़ा, मूढ़ कहते हैं मूर्ख को, जो बेवकूफ होते हैं ना, वो प्रपद्यन्ते शरण ग्रहण करते हैं। यानी यहाँ भगवान बता रहे हैं, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, जो दुष्कृतिनो होते हैं। यानी अब देखो, दो तरह के लोग होते हैं, एक दुष्कृतिनो होते हैं, एक सुकृतिनो होते हैं। तो भगवान ने पहला शब्द उच्चारण किया है उन व्यक्तियों के, प्रपद्यन्ते, जो भगवान की शरण में नहीं जाते हैं, उनको भगवान ने कहा वो तो दुष्कृतिनो है, वो दुष्ट हैं। और दूसरा शब्द कहा मूढ़, वो मूढ़ हैं, बेवकूफ हैं। और मायापहृत ज्ञान, माया मतलब माया के द्वारा, अपहृत मतलब चुराया गया है ज्ञान, यानी उनके पास ज्ञान था, क्योंकि हम सब भगवान के अंश हैं, तो भगवान ने हमें ज्ञान दिया है, लेकिन माया के अंदर आने के बाद वो ज्ञान हृत हो गया है। हृत मतलब चुरा लिया गया है। आसुरम, आसुरम अर्थात असुरी भाव, यानी प्रकृति या स्वभाव को आश्रिता अर्थात स्वीकार किए हुए हैं। अनुवाद, भगवान कहते हैं, जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। एक बार फिर से इस अनुवाद को बड़े ध्यान से सुनिए। भगवान ने कहा, जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। श्री प्रभुपाद जी भगवान के इन शब्दों को अत्यंत ही सुंदर रीति से समझाएंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि श्रीमद् भगवत गीता में ये कहा गया है कि श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से मनुष्य प्रकृति कठोर नियमों को लांग सकता है। अब जैसे हम लोगों ने श्लोक नंबर 14 में पढ़ा था ना, भगवान ने क्या बताया, दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्या। प्रकृति के नियम बहुत कठोर हैं, इनको पार करना अत्यंत ही दुष्कर है, परंतु भगवान ने कहा मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंति ते। जो मेरी शरण ग्रहण कर लेते हैं वे इन कठोर नियमों को लांग जाते हैं। यहाँ पर यह प्रश्न उठता है, तो फिर विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यापारी, शासक तथा जनता के नेता सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरण ग्रहण क्यों ग्रहण नहीं करते हैं? श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, जब भगवान ने बता दिया कि आप तब तक प्रकृति के दुखों से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि आप मेरी शरण ग्रहण नहीं करते, तो फिर इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, बड़े बड़े नेता हैं जनता के, वो क्यों भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं? बड़े बड़े जन नेता विभिन्न विधियों से विभिन्न योजनाएं बनाकर अत्यंत धैर्य पूर्वक जन्म जन्मांतर तक प्रकृति के नियमों से मुक्त होने की खोज करते हैं। क्या नियम है प्रकृति के? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, बूढ़ा होना, दुखी होना, बीमार होना, मृत्यु। इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े योजनाएं करते हैं कि बूढ़ा होने से बचा जाए, बीमार होने से बचा जाए, मृत्यु से बचा जाए, कष्टों से बचा जाए, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, सारी दुनिया। जिसके पास भी बुद्धि है वो कष्टों का निवारण चाहने के लिए सदैव प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन इन प्रकृति के नियमों को लांघने का केवल एक ही तरीका भगवान ने बताया कि माम एवयो प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आता है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, किंतु यदि वही मुक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से ही संभव है, तो बुद्धिमान तथा श्रमशील मनुष्य इस सरल विधि को क्यों नहीं अपनाते? कारण पूछ रहे हैं श्री प्रभुपाद जी, और भगवान इस श्लोक में हमें कारण बता रहे हैं। आगे कहते हैं, गीता इसका उत्तर अत्यंत ही स्पष्ट शब्दों में देती है। समाज के वास्तविक विद्वान नेता यथा ब्राह्मण, शिव, ब्रह्मा, शिव, कपिल, कुमारगण, मनु, व्यास, देवल, आसित, जनक, प्रहलाद, बलि तथा उनके पश्चात माध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा बहुत से अन्य श्रद्धावान दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, शिक्षक, विज्ञानी आदि हैं, जो सर्वशक्तिमान परम पुरुष भगवान के चरण कमलों में शरण लेते हैं। किंतु जो लोग वास्तविक दार्शनिक, वैज्ञानिक, शिक्षक, प्रशासक आदि नहीं हैं, किंतु भौतिक लाभ के लिए ऐसा बनते हैं, वे परमेश्वर की योजना या पद को स्वीकार नहीं करते, उन्हें ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता। वे अपनी सांसारिक योजना बनाते हैं और संसार की समस्याओं को हल करने में अपने व्यर्थ प्रयासों के द्वारा स्थिति को और जटिल बना देते हैं। क्योंकि भौतिक शक्ति इतनी बलवती है, इसलिए वह नास्तिकों की अवैध योजनाओं का प्रतिरोध करती है और योजना आयोगों के ज्ञान को ध्वंस कर देती है। तो श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर दो दार्शनिकों के विषय में या दो वैज्ञानिक के विषय में बता रहे हैं। दो टाइप के विद्वान हैं, एक तो वास्तविक है, जिनको वास्तविकता पता है। वास्तविकता क्या है जानते हो? कि पूरा संसार, ये प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य करता है। तो जब तक हम भगवान की शरण में नहीं जाएंगे, जीव कभी संतुष्ट नहीं रह सकता। तो जो वास्तविक विद्वान है, जिनके नाम यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने बताया, बड़े बड़े विद्वान, ब्रह्मा, शिव, कपिल, कुमार, मनु, व्यास, देवल, असित, जनक, प्रहलाद, ये सब क्या करते हैं? भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। परंतु जिन्हें आजकल इस संसार में ज्ञानी कहा जाता है, वो वास्तविक दार्शनिक नहीं है। उन्हें खुद पता नहीं है हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम क्यों दुख उठा रहे हैं। और वो अपने ही सांसारिक योजनाएं बनाते हैं कि इन भौतिक समस्याओं को इस तरह से हम पार करें। और क्योंकि प्रकृति बहुत बलवान है, भगवान ने पहले ही कह दिया है 14 में, दैवी यशा गुणमयी, ये दिव्य प्रकृति है, मुझ से आई है, इससे उलझने का प्रयास मत करो। तो मेरी शरण में आ जाओगे तो तुम इससे बहुत सरलता से पार कर लोगे। लेकिन यदि कोई जीव भगवान के इस आदेश के उल्लंघन करके अपनी शक्ति से इस माया को पार करने का प्रयास करता है, तो माया अवश्य उसका प्रतिरोध करती है और उसके ज्ञान को ध्वंस कर देती है। इसीलिए यहाँ पर पहला शब्द भगवान ने लिखा है, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, वो दुष्ट हैं जो मेरी बात नहीं मानते। इसलिए माया क्या करती है, उनका ज्ञान हरण कर लेती है। नास्तिक योजना, निर्मात्माओं को यहाँ पर दुष्कृतिनो कहा गया है, जिसका अर्थ है दुष्ट जन। कृति का अर्थ पुण्य आत्मा होता है। नास्तिक योजना निर्माता कभी कभी अत्यंत बुद्धिमान और प्रतिभाशाली भी होता है, क्योंकि किसी भी विराट योजना के लिए, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, बुद्धि की आवश्यकता होती है। लेकिन नास्तिक की बुद्धि का प्रयोग परमेश्वर की योजना का विरोध करने वाला होता है, इसीलिए नास्तिक योजना निर्माता दुष्कृति कहलाता है। अब कृति का क्या मतलब है, पुण्य आत्मा, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दुष्कृतिनो। अभी यदि आप अपनी बुद्धि को पुण्य कर्मों लगाओगे तो क्या होगा, सुकृतिनो। और किसी भी शब्द के साथ यदि दू लगा दिया जाए ना, तो मतलब वो दुष्कर हो जाता है, जटिल हो जाता है। तो इसलिए आप अपनी बुद्धि को जब नास्तिक कार्य करने में, नास्तिक योजनाओं को निर्माण करने में लगाते हो, भगवान की शरण नहीं आते हो, तो क्योंकि आप भगवान की योजना का विरोध करते हो, इसलिए ऐसे नास्तिक योजना निर्माता को यहाँ पर दुष्कृतिनो कहा गया है, जिसे सूचित होता है कि उसकी बुद्धि तथा प्रयास उल्टी दिशा की ओर होते हैं। गीता में यह स्पष्ट कहा गया है कि भौतिक शक्ति परमेश्वर की पूर्ण निर्देशन में कार्य करती है, उसका कोई स्वतंत्र प्रभुत्व नहीं है। भगवान कहते हैं 9.10 में, मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम, हे तुनाने व कौंते यह जगत भी परिवर्तित है। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति जो है वो तो मेरे इशारों पर काम करती है। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भौतिक प्रकृति के पास स्वतंत्र कोई कार्य करने का अख्तियार नहीं है। वो जो भी कार्य करती है वो भगवान के आदेश अनुसार करती है। जिस प्रकार छाया पदार्थ का अनुसरण करती है, उसी प्रकार से यह शक्ति भी कार्य करती है। तो भी यह भौतिक शक्ति अत्यंत ही प्रबल है और नास्तिक अपने अनीश्वरवादी स्वभाव के कारण यह नहीं जान सकता कि वह किस तरह से कार्य करती है, न ही वह परमेश्वर की योजना को जान सकता है। श्री प्रभुपाद जी ने अत्यंत सुंदर दृष्टांत दिया है छाया का। जैसे हमारा शेडो होता है, हम जैसे अपनी मूवमेंट करेंगे ना, वो शेडो में वैसा ही आएगा। उस शेडो के अंदर ये योग्यता है ही नहीं, उसके अंदर ये योग्यता है ही नहीं कि वो अपनी ओर से स्वतंत्र कोई एक्शन करे। और ना ही यहाँ पर भी श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जिस तरह वही कार्य करती है न, मोह तथा रजो एवं तमो गुणों में रहकर उसकी सारी योजनाएं उसी प्रकार ध्वंस हो जाती हैं जिस प्रकार भौतिक दृष्टि से विद्वान, वैज्ञानिक, दार्शनिक, शासक तथा शिक्षक होते हुए भी हिरण्यकशिपु तथा रावण की सारी योजनाओं योजनाएं ध्वंस हो गई थी। ये दुष्कृति या दुष्ट चार प्रकार के होते हैं जिनका वर्णन नीचे दिया गया है। अब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही मुख्य बात बताई है कि रावण और हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष या जितने बड़े बड़े असुर हो चुके हैं, आप ये मत समझना कि उनके पास बुद्धि नहीं थी, विद्या नहीं थी, उनके पास फिलॉसफी नहीं थी। वो बहुत बड़े राजा थे, शासक थे, दार्शनिक थे, लेकिन फिर भी क्योंकि वो अपनी संपूर्ण योग्यता और बुद्धि के बावजूद करना क्या चाहते थे, भौतिक प्रकृति जो कि भगवान की शक्ति है उस पर प्रभुत्व जताने की इच्छा कर रहे थे। तो जिसके कारण उनकी समस्त शक्ति, उनकी समस्त विद्या, उनका समस्त ज्ञान, समस्त योजनाएं विध्वंस हो गई। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो अपनी बुद्धि और अपनी योग्यता को भगवान के विरोध में यूज करता है, वो अपनी उन शक्तियों को खो बैठता है। और ऐसे दुष्कृति लोग कहलाते हैं। और दुष्कृति चार प्रकार के होते हैं जिनके विषय में अभी हम पढ़ेंगे। जैसे कि श्लोक में लिखा हुआ है मूढ़, पहला शब्द मूढ़, वे जो कठिन श्रम करने वाले भारवाही पशुओं की भांति निपट मूर्ख होते हैं। वे अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं, अतः वे भगवान को उसे अर्पित करना नहीं चाहते। भारवाही पशु का उपयुक्त उदाहरण गधा है। इस पशु के से उसका स्वामी अत्यधिक कार्य लेता है। गधा ये नहीं जानता कि वह अहर्निश किसके लिए काम कर रहा है। वह घास से पेट भरकर संतुष्ट रहता है। उसे स्वामी से मार खाने के भय से केवल कुछ घंटे सोता है और गधी से बार बार लात खाने के भय से भय के बावजूद भी अपनी काम तृप्ति पूरी करता है। कभी कभी गधा कविता करता है और दर्शन बढ़ाता है, किंतु उसके रेंकने से लोगों की शांति भंग होती है। ऐसी दशा उन सकाम कर्मियों की होती है जो नहीं जानते कि वे किस के लिए कर्म करते हैं। वे ये नहीं जानते कि कर्म यज्ञ के लिए है। अत्यंत ही सुंदर भगवान के प्रथम शब्द मूढ़ा का यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने बताया है उसके विषय में कि जिस प्रकार एक गधा होता है वो पूरा दिन बोझ उठाता है। उसको ये भी पता नहीं है कि मैं क्यों कर रहा हूँ। अगर वो घास खाने के लिए कर रहा है तो उसे इस घास खाने के लिए क्या चिंता करनी। वो उसको ये सब बोझ उठाने की आवश्यकता नहीं। वो जंगल में चला जाएगा तो घास तो वहां पर स्वतंत्रता से उसे मिलेगी, लेकिन वो पूरा दिन उस घास के लिए अपने मालिक का बोझा उठाता है और इंद्र तृप्ति की कामना करने की इच्छा करता है, जिसके कारण बार बार उसे कष्ट प्राप्त होता है। आज का मनुष्य भी ऐसा ही है। उसके भाग्य में जो है वो उसे कठिन परिश्रम करने की बजाय भी मिलता जाएगा, लेकिन जीव इतना कठिन परिश्रम करता है, इतना कठिन परिश्रम करता है, और यदि कोई उससे पूछे कि आप क्यों कर रहे हो, तो वो यही कहेगा कि जाहिर सी बात है, बच्चे हैं, घर है, पालना है सबको, तो फिर पैसे कमाने पड़ते हैं। उनसे कहो कि ठीक है, आप भले धन कमाओ, परंतु थोड़ा समय भगवान के लिए निकालो, 1 घंटा या आधा घंटा बैठ के आपको भगवत गीता श्रवण करनी है, या फिर भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का जप करना, तो कहेंगे आप क्या समझ रहे हो, इतना मैं बिजी होता हूँ, इतना व्यस्त होता हूँ, मुझे तो अपने खाने का समय नहीं मिलता, और आप मुझे कह रहे हो कि आप बैठ के भगवत गीता पढ़ो, तो इतना तो मेरे पास समय नहीं है। यानी कि वो अपने भौतिक कार्यों में इतने बिजी होते हैं कि उन्हें याद ही नहीं रहता कि हमारे जीवन का मकसद क्या है। तो श्रील प्रभुपाल जी ने बताया, यहाँ जैसे भगवान ने कहा, ऐसे लोग गधे के समान है, मूढ़ा, मूढ़ा का मतलब है गधा। और आगे कहते हैं, ऐसे लोग अपने द्वारा उत्पन्न कर्मों के भार से दबे रहते हैं। श्रील प्रभुपाल जी आगे यही बात बता रहे हैं कि ऐसे लोग जो अपने द्वारा उत्पन्न कर्मों के भार से दबे रहते हैं, प्रायः यह कहते सुनते सुने जाते हैं कि उनके पास अवकाश नहीं है कि वे जीव की अमरता के विषय में सुने। ऐसे मूढ़ों के लिए नश्वर भौतिक लाभ ही जीवन का सब कुछ होता है, भले ही वे अपने श्रम फल के एक अंश का ही उपयोग करते हो। कभी कभी वे लाभ के लिए रात दिन नहीं सोते, भले ही उनके आमाशय में व्रण हो गया हो जाए या अपच हो जाए, वे बिना खाए ही संतुष्ट रहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी आजकल के जो बहुत ज्यादा व्यापारी होते हैं, बड़े बड़े, और जो समझते हैं कि हम बहुत अपनी बुद्धि से हम लोगों ने बहुत ज्यादा उन्नति की है, उनके विषय में बता रहे हैं कि बेचारों का जीवन इतना कठिन होता है कि वो भौतिक लाभ के लिए सारा दिन कार्य करते हैं गधों की तरह, और कभी कभी तो उनकी तबीयत भी खराब हो जाती है, अपच हो जाता है, खा नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट रहते हैं और कार्य करते रहते हैं। वे माया में स्वामियों के लाभ हेतु अहर्निश काम में व्यस्त रहते हैं। अपने असली स्वामी से अनभिज्ञ रहकर ये मूर्ख कर्मी माया की सेवा में व्यस्त ही अपना समय गवाते हैं। दुर्भाग्य तो यह है कि वह कभी भी स्वामियों के परम स्वामी की शरण नहीं जाते, ना ही वे सही व्यक्ति से उसके विषय में सुनने में कोई समय लगाते हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है जीव का कि वो सेवा तो करता है, सेवा क्योंकि जीव का मूल धर्म है, उसको कभी भी जीव से आप अलग नहीं कर सकते। जब से हम पैदा हुए हैं, किसी न किसी की सेवा करते आए हैं। कभी जब हम बच्चे होते हैं छोटे, तब हम टीचर्स के आदेशों का पालन करते हैं और होमवर्क करते हैं, अपने शरीर की सुरक्षा जब छोटे होते हैं तब निर्भर होते हैं माता के ऊपर, और उसके बाद जैसे जैसे हम अपने मतलब अपने वाले होते हैं कि हम कुछ कर सकें, तब से हमने सेवा ही स्टार्ट की है, कभी माँ की, कभी बाप की, कभी टीचर की, उसके बाद गर्लफ्रेंड्स की, उसके बाद पत्नी की, फिर बच्चों की, मतलब जीव सेवा करते रहता है। और संसार में भी हम किसी न किसी की नौकरी करते हैं, कोई गवर्नमेंट की करता है तो कोई प्राइवेट करता है, कोई अपना कार्य कर रहा है, भले बड़ा नेता हो, बड़ा वो पॉलिटिक्स हो, लेकिन जनता की सेवा कर रहा है। लेकिन वास्तव में हम आत्मा है, और आत्मा क्या है, जीवेरे स्वरूप होए कृष्णेय नित्य दास, वो वास्तव में भगवान का सेवक है, लेकिन वो भगवान की सेवा नहीं करते हैं, बल्कि भौतिक व्यक्तियों की सेवा करके अपने पूरे जीवन को बर्बाद कर देते हैं, और वास्तविक ज्ञान को सुनने के लिए भी समय नहीं निकालते। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत ही कठोर शब्दों में कह रहे हैं कि जो सूकर विष्ठा खाता है, वह चीनी तथा घी से बना मिठाई की परवाह नहीं करता, उसी प्रकार से मूर्ख कर्मी इस नश्वर जगत में इंद्रियों को सुख देने वाले समाचारों को निरंतर सुनता रहता है, किंतु संसार को गतिशील बनाने वाली शाश्वत जीवन शक्ति यानी प्राण के विषय में सुनने में तनिक भी समय नहीं लगाता। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही वास्तविक बात कह रहे हैं कि जिस तरह सुअर को पता ही नहीं होता है कि वो मिठाई जिसके अंदर दूध है, चीनी है और पिस्ते बादाम सब ड्राई फ्रूट्स हैं, उसके अंदर कितना टेस्ट होगा, क्यों नहीं पता चलता, क्योंकि वो संतुष्ट है अपने मल खाने में। उसी प्रकार जो व्यक्ति इंद्रियों को सुख पहुंचाने वाले कार्यों में संतुष्ट है, उन्हें ये पता ही नहीं होता कि आत्मा के लिए जब हम कार्य करते हैं, जब हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, भगवान की लीलाओं को श्रवण करते हैं, भगवान के आदेशों का पालन करते हैं, तो उससे कितना शाश्वत आनंद मिलता है। क्योंकि भौतिक इंद्रियों को चाहे कोई कितना ही सुखी करता जाए वो कभी तृप्त नहीं होती, परंतु आत्मा भगवान के नाम से इतनी संतुष्ट हो जाती है कि जीव के समस्त कष्ट समाप्त हो जाते हैं। परंतु जैसा कि भगवान ने कहा कि वो मूर्ख होते हैं, मूढ़ होते हैं, इसलिए उन्हें अपनी इस वास्तविक स्थिति के विषय में न ज्ञान होता है और न वो सुनना चाहते हैं। और दूसरे प्रकार के दुष्कृति होते हैं, नराधम अर्थात अधम व्यक्ति कहलाते हैं। जैसे श्लोक को देखेंगे, नमाम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। नराधम मतलब नर कहते हैं मनुष्य को, अधम मतलब गिरा हुआ। नर का अर्थ है मनुष्य और अधम का अर्थ है सबसे नीच। 84 लाख जीव योनियों में से 4 लाख मानव योनियां हैं, इनमें से अनेक निम्न मानव योनियां हैं, जिनमें से अधिकांश असंस्कृत हैं। सभ्य मानव योनियां वे हैं जिनके पास सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक नियम है, यानी वो मनुष्य जो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते वो तो असंस्कृत है। उन्हें पता ही नहीं होता है कि रूल्स क्या होते हैं। जो आदिवासी होते हैं, जो दिल करे खा लेते हैं, जैसे रहते हैं कपड़ों का, किसी का कोई उनको ज्ञान नहीं होता है। लेकिन सभ्य योनियां वो होती है जिनके पास सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक नियम होते हैं। जो मनुष्य सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से उन्नत हैं, किंतु जिनका कोई धर्म नहीं होता है, वे नराधम कहलाते हैं। अब उनकी तो बात ही नहीं हो रही है जिनके पास कोई रूल एंड रेगुलेशंस नहीं है, लेकिन जो वास्तव में उन्नत हैं, जो भौतिक दृष्टि से सामाजिक, पॉलिटिक्स वगैरह के नियम को फॉलो करते हैं परंतु अपने वास्तविक धर्म को फॉलो नहीं करते, शास्त्र को अध्ययन नहीं करते, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कार्य नहीं करते, भगवान की पवित्र नाम का जप नहीं करते, भगवान की कथाओं को श्रवण नहीं करते। भगवान ने साफ साफ कहा, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। वो मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए वो नरों में अधम है, यानी कि बहुत ही घिरे हुए लोग हैं। और भगवान ऐसा क्यों कहते हैं, उसका उत्तर देते हुए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि शास्त्रों से पता चलता है कि जब बालक माँ के गर्भ में अत्यंत ही असहाय हालत में होता है तो वह अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करता है और वचन देता है कि वह गर्भ से बाहर आते ही केवल भगवान की पूजा करेगा। संकट के समय ईश्वर का स्मरण प्रत्येक जीव का स्वभाव है, क्योंकि वह ईश्वर के साथ सदा से संबंधित रहता है। किंतु उद्धार के बाद बालक जन पीड़ा को और उसी के साथ अपने उद्धार को भी भूल जाता है, क्योंकि वह माया के वशीभूत हो जाता है। यह तो बालकों को के अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे उनमें सुप्त दिव्य भावनामृत को जागृत करें। अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी हमारे जीवन से जुड़ी हुई एक सत्य घटना के विषय में बताते हैं। वास्तव में भक्तों, इस संसार में जीव भले ही कितना ही प्रयास करता है अपने को सुखी करने का, लेकिन जब हार जाता है, संकट जब बहुत ज्यादा तीव्र हो जाता है, तो भगवान को याद करता ही है। हमारे जीवन में अनेकों ऐसी घटनाएं आई होंगी जब हम हमारी बुद्धि, हमारी शक्ति, हमारा धन, हमारा वैभव, हमारा परिवार, हमारे सभी सगे संबंधी, हमारे मित्र, हमारे प्रेमी जन हमें दुखी करते हैं या फिर हमारे दुख को दूर करने में असहाय होते हैं, तो फिर डेफिनेटली उस समय जीव भगवान का आश्रय लेता है और भगवान से ये प्रार्थना करता है कि आप मुझे इस कष्ट से निकालिए और मैं आपकी भक्ति करूंगा। वही समय होता है जब जीव गर्भ में होता है, वहां उसकी सहायता करने के लिए कोई नहीं होता, ना वहां पर कोई माता पिता भाई बंधु मित्र, कोई धन दौलत आपकी सहायता कोई नहीं कर सकता। शास्त्र तो अगर हम पढ़ते हैं तो हमें क्या लगता है, परीक्षित महाराज को भगवान ने गर्भ में जाकर ब्रह्मास्त्र से बचाया, लेकिन क्या आपको बचाने के लिए आपके पिताजी गए थे अंदर? क्या गर्भ में आपके ऊपर कष्ट नहीं था? गर्भ में कितने सारे जीव होते हैं, जठरा अग्नि जल रही होती है, बहुत माता अनेक पदार्थ का सेवन करती है, और गर्भ में कौन आपकी रक्षा करता है? गर्भ में केवल वही भगवान हमारी रक्षा कर रहे होते हैं। गर्भ में बहुत कष्ट होता है, हम भूल गए हैं, इसका मतलब ये थोड़ा है कि वो कष्ट है ही नहीं। लेकिन शास्त्र हमें बताता है कि जब गर्भ में बालक के ऊपर बहुत कष्ट होता है तो भगवान से वो प्रार्थना करता है कि भगवान आप मुझे यहाँ से निकालिए, इस बहुत बहुत ही खौफनाक नरक से मुझे बाहर निकालिए, मैं बाहर जाकर आपकी अवश्य भक्ति करूंगा। लेकिन बाहर आने के बाद माया के संसर्ग से के कारण जब माया उसके ऊपर वशीभूत हो जाती है तो वो अपने इस उद्धार करने वाले भगवान को और अपने प्रॉमिस को भूल जाता है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं वो भूल गया है, लेकिन जो उसके माता पिता गुरुजन हैं, जिनके जिनको उसका संरक्षण प्राप्त है, तो फिर उनका ये कर्तव्य है ना, माता पिता का, गुरु का, और हम सबका ये कर्तव्य है कि जो हम पर आश्रित हैं उन्हें हम भगवान की भक्ति के विषय में बताएं। क्योंकि शास्त्र कहता है गुरु न सस्यात् जननी न सस्यात् पिता न सस्यात् न मोचये तत् समुपैति मृत्यु, कि वो पिता पिता कहलाने के योग्य नहीं है, वो माता माता कहलाने के योग्य नहीं है, वो गुरु गुरु कहलाने के योग्य नहीं है, जो अपने आश्रित को जन्म मृत्यु के चक्कर से बचाने के लिए भगवान की शरण ग्रहण करना नहीं सिखाता। आगे श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं वर्णाश्रम पद्धति में मनुस्मृति के अनुसार ईश्वर भावनामृत को जागृत करने के उद्देश्य से 10 शुद्ध संस्कारों का विधान है जो धर्म का पथ प्रदर्शित करते हैं, किंतु अब विश्व के किसी भाग में किसी भी विधि का दृढ़ता पूर्वक पालन नहीं होता है, फलस्वरूप 99.9% जनसंख्या नराधम है। नराधम का मतलब क्या था कि जो भगवान के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं हमारी वर्ण आश्रम पद्धति में 10 संस्कार हैं जो कि हर मानव को करने पड़ते हैं, लेकिन अब 99.9% जनसंख्या वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रही है, इसलिए वो क्या है, नर अधम है। जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं, हम वर्णाश्रम पद्धति का यदि बात करें तो आश्रम होते हैं 4 प्रकार के और 4 प्रकार के वर्ण होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये वर्ण होते हैं, और आश्रम होते हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। अब ब्रह्मचर्य जो अवस्था होती है वो हर किसी की होती है, चाहे वो किसी भी वर्ण में हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो। ब्रह्मचर्य अवस्था क्या होती है, 5 साल से लेकर 25 साल तक एक मनुष्य को वेद अध्ययन करने पड़ते हैं, शास्त्र अध्ययन करने पड़ते हैं, जैसे भगवद गीता और भागवतम इस कलयुग के लिए। एटलीस्ट ये 2 शास्त्रों को हमें पढ़ना है, समझना है, और इनके लिए क्या है, 5 से लेकर 25 साल तक जब एक व्यक्ति ये सारी दोनों शास्त्रों को पढ़ लेता है और इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलता है, तो उसके बाद 25 साल, यानी कि पुरुष की एज होती है 25 साल और महिला की या स्त्री की 18 से 20 साल, तो फिर वो क्या कर सकते हैं, फिर वो विवाह कर सकते हैं। लेकिन आज आप बताइए कि 25 साल तक किसी को पता होता है कि भगवद गीता में क्या लिखा हुआ है, भगवद गीता के अंदर कितने श्लोक हैं, भगवान ने भगवद गीता बताई क्यों है। हम अगर पढ़ने का प्रयास भी करते हैं ना छोटे, तो फिर भी पेरेंट्स बोलते हैं ये उम्र है तुम्हारी, स्टडी करो अपनी, फेल हो जाओगी, इससे बेहतर है ये भगवद गीता तो तुम बाद में पढ़ लेना ना, शादी के बाद आराम से, बूढ़ी हो जाओगी मर रही होगी तब जाके पढ़ना। बच्चे को पढ़ने नहीं दिया जाता, जवान के पास अपने प्रेम व्यवहारों से समय नहीं होता, शादी के बाद अपनी घर गृहस्थी से समय नहीं मिलता, और बूढ़ा होने के बाद तो आप पढ़ ही नहीं सकते, यानी कि वो समय ही नहीं है जब हम अपने शास्त्रों को अध्ययन करें। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है, श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब ब्रह्मचर्य आश्रम आपका परफेक्ट नहीं होता है तो क्या होता है, आप विवाह कर लेते हो, फिर आपको क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन शास्त्रों के पता ही नहीं होते हैं, इसलिए आप समस्त रूल्स का उल्लंघन करते हो और आपका गृहस्थ जीवन बर्बाद हो जाता है, कोई सुखी नहीं रहता जीवन गृहस्थ में। और उसके बाद क्योंकि गृहस्थ जीवन आपका सही नहीं है, तो फिर इसके कारण आप वानप्रस्थ लेते ही नहीं हो, मोह खत्म होता नहीं, आसक्ति कम होती नहीं, संन्यास का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो 99.9% जनसंख्या क्या है, नराधम है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते जब सारी जनसंख्या नराधम हो जाती है तो वास्तविक है कि उनकी सारी तथा कथित शिक्षा भौतिक प्रकृति की सर्वसमर्थ शक्ति द्वारा व्यर्थ कर दी जाती है। अब जो नराधम है उनकी शिक्षा सारी भौतिक प्रकृति के द्वारा खत्म कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि भौतिक प्रकृति, भगवान ने बताया माया अधिक्षेण, ये प्रकृति मेरे अंदर में है, मेरे आदेश अनुसार कार्य करती है। गीता के अनुसार विद्वान पुरुष वही है जो एक ब्राह्मण कुत्ता गाय हाथी तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखता है। असली भक्त की भी ऐसी ही दृष्टि होती है। गुरु रूप ईश्वर के अवतार श्री नित्यानंद प्रभु ने 2 भाइयों जगाई तथा मधाई नामक शिक्षक नराधमों का उद्धार किया और यह दिखला दिया कि किस प्रकार शुद्ध भक्त नराधमों पर दया करता है। अतः जो नराधम भगवान द्वारा बहिष्कृत किया जाता है वह केवल भक्त की अनुकंपा से पुनः अपना आध्यात्मिक भावना अमृत प्राप्त कर सकता है। अत्यंत सुंदर श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जब जीव भौतिक प्रकृति के कठोर नियमों के द्वारा बहिष्कृत हो जाता है, भगवान के बताए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन नहीं करता है, तो भी उसे दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी एक तरीका ऐसा है कि आपने भले ही अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं किया है, आपने अपना ब्रह्मचर्य जो अवस्था है उसको वेस्ट कर दिया, अपने वर्ण का कोई ख्याल नहीं किया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कुछ पता नहीं है, लेकिन यदि आप किसी शुद्ध वैष्णव के सानिध्य में आ जाते हो तो फिर आप पुनः अपने आध्यात्मिक जीवन को प्रारंभ कर सकते हो। और अत्यंत सुंदर यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया नित्यानंद प्रभु का, जैसे 2 भाई थे जगाई और मदाई, वो उन्होंने कोई भी ऐसा दुष्कर्म नहीं था जो छोड़ा हो, यानी कि आपके माइंड में जो भी बड़े से बड़े अपराध आते हैं, शराब पीना, गोश्त खाना, जुआ खेलना, रेप करना और ब्राह्मणों की हत्या करना, हर एक दुष्कर्म उन्होंने किए थे, परंतु गुरु रूप नित्यानंद प्रभु ने जब उनसे भगवान के पवित्र नाम का जप करने के लिए कहा और उसके अपराध उन्होंने श्रीपाद नित्यानंद प्रभु का भी अपराध किया, लेकिन भक्त इतने ज्यादा विनम्र होते हैं, उनके अंदर इतनी करुणा होती है कि भले आप उनका अपराध भी करते हो फिर भी वो आपके जीवन का कल्याण ही करते हैं। तो अगर हम किसी शुद्ध वैष्णव की शरण ग्रहण करते हैं तो अवश्य हमारे समस्त अपराधों का समाधान हो जाता है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने भागवत धर्म का प्रवर्तन करते हुए संस्तुति की है कि लोग विनीत भाव से भगवान के संदेश को सुने। इस संदेश का सार श्रीमद् भगवत गीता है। चैतन्य महाप्रभु का एक आदेश है, हमें याद रखना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। कृष्ण उपदेश क्या है? जो कृष्ण ने उपदेश किया है, यानी चैतन्य महाप्रभु ये नहीं चाहते कि हम जिससे भी जुड़े उन्हें अपनी तरफ से कुछ और बताएं। उन्हें क्या बताएं? जो कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में बताया वो बताएं, और विनीत भाव से, यानी कि आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आप कृपा करिए, ये भगवान का संदेश है, आप सुनिए। मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ और भगवान ने मुझे आपकी सेवा करने के लिए नियुक्त किया है, तो कृपा करिए मेरे इस संदेश को आप सुनिए। विनीत भाव से श्रवण करने मात्र से, एक तो सुनने वाला विनीत होना चाहिए, एक तो बोलने वाला खुद भी होना चाहिए, और सुनने वाले के अंदर भी चैलेंजिंग मूड नहीं होना चाहिए। भगवान के शब्द हैं, वो आपको पढ़ के सुना रहा है, आप विनम्रता के साथ सुनिए। तो इससे क्या होगा? श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, श्रवण करने मात्र से अधम मनुष्य का उद्धार हो सकता है, किंतु दुर्भाग्यवश वे इस संदेश को सुनना तक नहीं चाहते। परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण करना तो दूर रहा, ये नराधम मनुष्य के प्रधान कर्तव्य की ढट कर उपेक्षा करता है। मतलब भगवान की शरण ग्रहण करना, भगवान ने कहा नमाम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, जो नर अधम है वो मेरी शरण में नहीं आते। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, शरण में आना तो बहुत दूर की बात है, वो तो सुनना तक नहीं चाहते। अब देखिए, हम घर बैठे भगवत गीता सुना रहे हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं, आपको घर बैठे श्लोक भेज रहे हैं, आपसे विनम्रता के साथ रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कृपा करके भगवान के संदेश को सुनिए। आप आपसे बदली में कुछ भी नहीं लिया जाता, सिर्फ और सिर्फ आपको एक रिक्वेस्ट की जाती है कि इतना सारा समय है आपके पास 24 घंटे में, थोड़ा सा समय निकालिए, भगवद गीता के श्लोक को श्रवण कीजिए। उसकी बदली में कोई रिटर्न में नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, ना मान चाहिए, ना सम्मान चाहिए, ना फेम चाहिए, ना आपका आदर चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ श्रवण कीजिए। आप श्रवण करो, क्योंकि हमारी ड्यूटी है, भगवान ने हमें ये आदेश दिया है कि आप तक पहुंचाएं, हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, आप सुनो तो सही कम से कम। वो सुनते नहीं है। और श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, मनुष्य के प्रधान कर्तव्य, ये हमारा प्रधान कर्तव्य है, हम भगवान के अंश हैं, तो भगवान के आदेशों को श्रवण करना। जैसे किसी भी गवर्नमेंट में आप होते हो तो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को पता होना तो आपका कर्तव्य है ना। लेकिन ये क्योंकि हम मनुष्य हैं, भगवान की ये प्रकृति है, भगवान के यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस चलते हैं, तो उनके विषय में श्रवण करना हमारा प्रधान कर्तव्य है। परंतु आज का जीव अपने इस कर्तव्य की डट कर उपेक्षा करता है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं तीसरा, अब जैसे हम लोग दुष्कृतिनों के प्रकार के विषय में पढ़ रहे हैं, कितने प्रकार हमने पढ़े, एक तो मूढ़ा, मूढ़ वो होते हैं जो बेवकूफ होते हैं, सांसारिक कार्य करते रहते हैं और समझते हैं कि इन्हीं से हमें संतुष्टि प्राप्त होगी, गधों की तरह काम करते हैं। और नराधम वो होते हैं जो भले ही सांसारिक लिहाज से बहुत ज्यादा शिक्षक होते हैं और उनको पता होता है, ज्ञान होता है, लेकिन वो भगवान के इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को ना सुनना चाहते हैं, उन पर अमल करना तो बहुत दूर की बात है, तो ऐसे नराधम। और तीसरे नंबर की श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, दुष्कृतिनों की तीसरी श्रेणी माया प्रवृत्त ज्ञाना की है, अर्थात ऐसे व्यक्तियों की जिनका प्रकांड ज्ञान माया के प्रभाव से शून्य हो चुका है। वैसे तो उनके पास बहुत 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 ज्ञान होता है, शास्त्रों का ज्ञान भी होता है, वेदों का ज्ञान भी होता है लेकिन माया के द्वारा हर लिया जाता है। अर्थात ऐसे व्यक्तियों की जिनका प्रकांड ज्ञान माया के प्रभाव से शून्य हो चुका है, ये अधिकांशतः बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, यथा महान दार्शनिक, कवि, साहित्यकार, वैज्ञानिक आदि। किंतु माया उन्हें भ्रमित कर देती है जिसके कारण वे परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं। अब देखिए, बड़े बड़े फिलोसोफर होते हैं, बड़े बड़े कवि होते हैं, बड़े बड़े अफसाना निगार होते हैं, साहित्यकार, वैज्ञानिक होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं। अब क्या सोचते हैं, भगवान बोल रहे हैं कि उनके पास ज्ञान नहीं? नहीं, भगवान ये कह रहे हैं ज्ञान है, बुद्धि तो मैंने उनको बहुत ही दी है। और उसका वो यूज कैसे कर रहे हैं? भौतिक वस्तु और भौतिक वस्तुओं के उपयोग के कारण हम कैसे अपने इस भौतिक शरीर को संतुष्ट करें, केवल यही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य। तो बुद्धि उनके पास है, ज्ञान उनके पास है, मगर माया ने उनके इस ज्ञान को इतना ज्यादा हर लिया है। अब जो पहले वाले थे ना मूढ़, उनके पास तो बुद्धि थी नहीं, वो तो समझ रहे थे कि बस कमाओ खाओ, कमाओ खाओ, कमाओ खाओ, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, बस गधे की तरह मेहनत करो और फिर जो रूखा सूखा मिलता है उसको खा के और उसी से संतुष्ट रहो। लेकिन यहाँ पर जिनकी बात की जा रही, उनके पास बुद्धि बहुत है, ज्ञान बहुत है, परंतु माया के प्रभाव के कारण। क्योंकि अब माया जो है, भगवान ने पहले बताया कि दैवी हेशा गुणमयी मम माया दुरत्यय, ये माया को पार करना बहुत कठिन है। इसको पार करने के लिए एक ही उपाय, दूसरा कोई उपाय नहीं, क्या आपको मेरी शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। अब लेकिन क्योंकि वो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं, तो इसके कारण क्या होता है, माया उसके ऊपर कंट्रोल कर लेती है और उसका पूरा ज्ञान किडनैप कर देती है। और शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि किंतु माया उन्हें भ्रांत कर देती है जिनके कारण ये परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं। फिर उनको अगर भगवान के विषय में बताया भी जाए कि भगवान कहते हैं आपको हमारी शरण में आना है, आपको भगवान के पवित्र नाम का जप करना है, भगवान की पवित्र कथाओं को श्रवण करना है, लेकिन फिर वो क्या करते हैं, जानबूझ के वो ये काम नहीं करते और भी अवज्ञा करते हैं भगवान की। इस समय माया प्रकृत ज्ञाना की बहुत बड़ी संख्या है, यहाँ तक कि वे भगवत गीता के विद्वानों के मध्य भी हैं। गीता में अत्यंत सीधी सरल भाषा में कहा गया है कि श्री कृष्ण ही भगवान है, ना तो कोई उनके तुल्य है, ना ही उनसे बड़ा है। वे समस्त मनुष्यों के आदि पिता, ब्रह्मा के भी पिता बताए गए हैं। वास्तव में वे ब्रह्मा के ही नहीं अपितु समस्त जीव योनियों के भी पिता हैं। वे निराकार ब्रह्म तथा परमात्मा के मूल हैं। जीव आत्मा में स्थित परमात्मा उनका अंश है। वे सबके उत्स हैं और सबों के को ये सलाह दी जाती है कि उनके चरण कमलों की शरणागति बने। इन सब कथनों के बावजूद भी माया प्रहृत ज्ञाना भगवान का उपहास करते हैं और उन्हें एक सामान्य मनुष्य मानते हैं। वे ये नहीं जानते कि भाग्यशाली मानव भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शाश्वत रूप के अनुरूप ही रचा गया है। बड़े अफसोस की बात है, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बहुत ज्ञान प्राप्त किया है, यानी कि वो भगवत गीता को समझते हैं, भगवत गीता को पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी भगवत गीता का जो मुख्य आदेश है क्या, मन मना भव मत्तत्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, कि आपको भगवान की शरण में आना है, भगवान के पवित्र नाम का जप करना है, भगवान की पूजा करनी है, भगवान की भक्ति करनी है, हृदय में भगवान कृष्ण की ही का चिंतन करना है। ब्रह्म परमात्मा ये सब भगवान के अंश हैं, जीव भगवान का अंश है, समस्त प्राणी ये जो है, भगवान कहते हैं पिता हमस्य जगत हो, मैं समस्त जीवों का, जीव जितने भी जीव प्राणी है उनका पिता हूँ, इस वास्तविक सिद्धांत को नहीं समझते हैं। और जब भगवान की बात की जाती है, भगवान की लीलाओं की या भगवान की भक्ति की, तो वो उपहास करते हैं। और आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, गीता की ऐसी सारी अवैध व्याख्याएं जो माया प्रहृत ज्ञान वर्ग के लोगों द्वारा की गई हैं और परंपरा पद्धति से हटकर हैं, आध्यात्मिक जानकारी के पथ में रोड़े का कार्य करती है। मायाग्रस्त व्याख्याकार ने ना तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के शरण कमलों की शरण में जाते हैं और न ही अन्यों को इस सिद्धांत का पालन करने के लिए शिक्षा देते हैं। अब आप हम खुद भी सोच सकते हैं कि जो स्वयं भगवान से द्वेष करते हैं, भगवान की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, भला उनकी व्याख्याओं को पढ़कर, उनकी टीकाओं को पढ़कर हम क्या भगवान की भक्ति करना सीखेंगे। तो वो तो और भी हमारे और भगवान के मध्य की जो प्रेम है उसको और भी खत्म कर देंगे। इसलिए हमें भगवत गीता केवल शुद्ध भक्तों से, जो स्वयं भगवान की शरण। अब देखो, भगवान ने साफ साफ कह दिया कि जो दुष्कृति होते हैं वो मेरी शरण में नहीं आते हैं। यानी कि अगर आपको संसार में कहीं दुष्कृति ढूंढना है, कोई मूढ़ ढूंढना है, कोई नराधम ढूंढना है, कोई असुर ढूंढना है, तो इस कलयुग में आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसके सिर पर दो सींग होंगे, दो बड़े बड़े दांत होंगे, आगे काला काला मुंह होगा, आंखों के साइड में बहुत गहरा गहरा होगा और ऐना बड़े बड़े बाल होंगे, ऐसा नहीं होगा। उसका सिंपल उदाहरण यही है कि वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करेगा। तो भगवान ने अभी आगे हम पढ़ेंगे राक्षसिम असुरिम भाव। तो वास्तव में जो मूढ़ है, बेवकूफ है, अज्ञानी है, उसकी पहचान क्या है कि वो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करता। तो भले कितनी ही बड़ी फिलोसफी झाड़ता है, बड़े बड़े शास्त्र लिखता है या जो भी करता है, अगर वो भगवान का भक्त नहीं तो वो भगवान की नजर में ज्ञानी नहीं है। क्योंकि भगवान ने कहा माया प्रसृत ज्ञान, भौतिक ज्ञान भले ही उसे कितना हो लेकिन माया के द्वारा उसका संपूर्ण ज्ञान हर लिया गया है। इसलिए वो क्या नहीं करता, नमाम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते, वो मेरी शरण ग्रहण नहीं करता। इसीलिए आपको उसकी शरण ग्रहण करने की या उससे श्रवण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो दुष्कृतियों की चौथी श्रेणी है उसके विषय में बता रहे हैं, जैसे कि हमने श्लोक में पढ़ा माया प्रसृत ज्ञान आसुरम भावम आश्रिता, आसुरम भावम आश्रिता, अर्थात असुरी सिद्धांत वालों की चौथी श्रेणी है। यह श्रेणी खुले रूप से नास्तिक होती है, एकदम ओपनली वो कहते हैं कि भगवान भगवान कुछ नहीं होता। इनमें कुछ तर्क करते हैं कि परमेश्वर कभी भी इस संसार में अवतरित नहीं हो सकता, किंतु वे इसका कोई ठोस प्रमाण बता नहीं पाते कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। कुछ ऐसे हैं कि जो परमेश्वर को निर्विशेष रूप में अधीन मानते हैं, यद्यपि गीता में इसका उल्टा बताया गया है। अब गीता में क्या बताया, भगवान कहते हैं ब्रह्मण्यो ही प्रतिष्ठा हम, आगे भगवान कहते हैं, कहेंगे अभी हम पढ़ेंगे कि जो निर्विशेष स्वरूप है वो मुझसे आया है। लेकिन वो क्या कहते हैं, जो आसुरम भाव आश्रिता, वो कहते हैं कि वास्तव में भगवान निर्विशेष है लेकिन जो साकार है वो उससे आया है। अभी थोड़ी सी बुद्धि हम यूज करें, संसार में जो भी निराकार है वो सब कहाँ से आता है, साकार से आता है। जैसे सूर्य की रोशनी है वो निराकार है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन वो आई कहाँ से है, सूर्य से आई है। अब उसी तरह से स्वाद है, जल का स्वाद है, जल साकार है तभी तो उसके अंदर स्वाद है। उसी तरह से हमारी आंख है तभी तो सामने दृष्टि है। यानी कि कोई भी साकार वस्तु से ही निराकार का उत्पन्न होता है, निराकार जो है वो साकार की उत्पत्ति होती है। लेकिन इतने बेवकूफ होते हैं यहाँ पर वो बता रहे श्लोक प्रभुपाद जी कि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को निर्विशेष रूप के अधीन मानते हैं कि निर्विशेष है, पहले भगवान कुछ नहीं है उसमें से कुछ आता है। ऐसे कैसे हो सकता है, भगवान कुछ है। ब्रह्मा जी बताते हैं गोलोक नामनी निज धामनी तले चतास्य, वो गोलोक वृंदावन धाम में अपने धाम में सदैव रहते हैं, वहां पर लीलाएं करते हैं, वहां पर आनंद करते हैं और उन्हीं से ही समस्त सृष्टियां उत्पन्न होती हैं। यद्यपि श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं गीता में तो उल्टा बताया गया है कि वास्तव में भगवान साकार है और उनसे ही निराकार का उत्पन्न हुआ है। नास्तिक श्री भगवान के द्वेषवश अपनी बुद्धि से कल्पित उन अनेक अवैध अवतारों को प्रस्तुत करते हैं। अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बुद्धि से ही हर किसी को बोल देते हैं ये भगवान का अवतार है, ये भगवान का अवतार है। कोई किसी गुरु को खड़ा कर देता है, कोई तथा कथित साधुओं को खड़ा कर देते हैं। कुछ भी उनके अंदर ना ज्ञान होता है, ना पवित्रता, ना भक्ति, उन्हें भगवान का अवतार कहके बोलते हैं, हाँ ये भगवान का अवतार है, अभी हमको इसकी शरण में जाना चाहिए। ऐसे लोग जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान को नकारना होता है, वो क्या चाहते हैं कि जीव जो है वो भगवान से हट जाए, बस भगवान की बुद्धि हट जाए, भगवान से प्रेम उनका खत्म हो जाए। तो ये क्या करते हैं, अलग अलग व्यक्तियों को भगवान बनाकर उनके सामने खड़ा कर देते हैं। श्री कृष्ण के चरण कमलों के कभी शरणागत नहीं हो सकते, वो वास्तविक ज्ञान को कभी समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि समझने का प्रयास नहीं करते। आपके अंदर यदि श्रवण करने की श्रद्धा नहीं है शुद्ध वैष्णव से, तो भले ही आप कितनी कोशिश कर लो, आप कभी भी भगवान को नहीं समझ सकते। भौतिक वस्तुएं वो भी हम बगैर किसी गुरु की नहीं समझ सकते, तो फिर भगवान तो आध्यात्मिक है, तो हम कैसे भगवान के विषय में समझ सकते हैं। तो क्या होता है कि हम कभी भी भगवान की शरण नहीं लेते। ऐसे व्यक्ति जो कि भगवान के ज्ञान को श्रवण करने की इच्छा नहीं करते। आगे श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं, दक्षिण भारत के श्री यामुनाचार्य उल बंदरु ने कहा है कि हे प्रभु, आप उन लोगों द्वारा नहीं जाने जा सकते जो नास्तिक सिद्धांतों में लगे रहते हैं, भले ही आप विलक्षण गुण रूप तथा लीलाओं से युक्त हैं। सभी शास्त्रों ने आपका विशुद्ध सत्वमयी विग्रह प्रमाणित किया है तथा दैवी गुण संपन्न दिव्य ज्ञान के आचार्य भी आपको मानते हैं। नास्तिक का मतलब होता है जो ये मानते हैं कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं है। तो यहाँ श्री यामानुज आचार्य बता रहे हैं कि आप उन लोगों द्वारा नहीं जाने जा सकते जिनके मन में ये धारणा होती है कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान है ही नहीं, भगवान का अस्तित्व नहीं है। फिर आपके विलक्षण गुण रूप तथा लीलाओं से युक्त आपके विषय में श्रवण कर भी उनको समझ, मतलब वो अंदर से इस बात को मानते ही नहीं, तो अगर कोई उन्हें बताएगा तो क्या करेंगे, और भी उपहास करेंगे। सभी शास्त्रों ने आपका विशुद्ध सत्वमय विग्रह प्रमाणित किया है। अब शास्त्र को हम पढ़े, श्रीमद भगवद गीता को पढ़े, या भागवतम को पढ़े, या कोई भी विष्णु पुराण इत्यादि, तो हमें भगवान की अनेक अनेक लीलाओं के विषय में पता चलता है। और सब कुछ यहाँ पर सत्वमय विग्रह भगवान की, मतलब भगवान की जो विग्रह होती है वो भी सच्चित आनंद होती है। भगवान का जो स्वरूप होता है संसार में, जब भगवान आते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो हमारी तरह हाड़ मांस का शरीर लेकर आते हैं। उनका सत्वमयी चिन्मयी शरीर होता है, मतलब आत्मा होते हैं। भगवान जो है वो सिर से निक तक, भगवान के अंदर भौतिक कुछ नहीं होता, वो पूरे के पूरे परमात्मा होते हैं। भगवान का जो देह होता है, जो संसार में हम जिसे देह कहते हैं, वो इस तरह हमारी तरह हाड़ मांस से नहीं बना होता है। लेकिन क्योंकि वो इस बात को समझ नहीं पाते, उनकी बुद्धि इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाती कि इस संसार में कोई इस तरह, तो फिर वो कार्य जब करते हैं तो क्या होता है, भगवान बताते हैं 9.11 में, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम, कि जब मैं संसार में आता हूँ और विभिन्न लीलाएं करता हूँ, तो जो मूढ़ लोग होते हैं वो मुझे नहीं जानते हैं, इसलिए वो मेरी लीलाओं का, मेरे कार्यों का उपहास करते हैं। अब आगे श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अतएव नंबर एक मूढ़, नंबर दो नराधम, नंबर तीन माया प्रहृत ज्ञान अर्थात भ्रमित मनोधर्मी, तथा नंबर चार नास्तिक। ये चार प्रकार के दुष्कृति कभी भी भगवान के चरण कमलों के शरण में नहीं जाते, भले ही सारे शास्त्र तथा आचार्य ऐसा उपदेश क्यों ना देते रहे। अतीव सुंदर श्लोक था, और श्रील प्रभुपाद जी ने एक एक शब्द को बहुत ही सुंदर रीति से समझाया। तो इस श्लोक में आशा है कि सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि भगवान ने क्या कहा, जो मूढ़ होते हैं, बेवकूफ होते हैं, जिनके पास ज्ञान नहीं होता है, जो समझते हैं कि इंद्रिय तृप्ति ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, तो उसके लिए वो गधे की तरह श्रम करते हैं, लेकिन भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। नाराज हम होते हैं जो शास्त्रों के विषय में जानते ही नहीं है, और क्योंकि जानते नहीं है तो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते, इसलिए उनको नाराज हम कहा जाता है। माया प्रवृत्त ज्ञान, उनके पास ज्ञान होता है, बड़े बड़े फिलोसोफर होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, लेकिन वो भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते और नाराधम राक्षस आसुरम भाव आश्रितम, यानी नास्तिक होते हैं। जो ये चार प्रकार के दुष्कृत होते हैं, वो भले उनको कितना ही आदेश दिया जाए, शास्त्र के विषय में पढ़ा जाए, बताया जाए, लेकिन वो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन तो रेज होता ही है कि हमें भगवान ने बनाया है, ये हमारी इच्छा है ना भगवान ने। अब देखो यहाँ पर देखा जाए तो भगवान को जितनी भी गालियां आ रही थी ना, वो सब इनको दे दी जो भगवान की शरण नहीं ग्रहण करते। तो कोई सोच सकता है कि हमें जब भगवान ने संपूर्ण स्वतंत्रता दी है कि आप संसार में जाओ, जैसे दिल करता है आप अपने जीवन को जियो, आपको पूरी स्वतंत्रता है, और भगवान हमें उसके लिए पूरी प्रोटेक्शन भी देते हैं, भगवान सहायता भी देते हैं, तो भगवान क्यों हमें बोल रहे हैं ऐसा कि आपको मेरी शरण में आना है, अन्यथा आप दुष्ट हो, अन्यथा आप मूर्ख हो, अन्यथा आप ना नराधम हो, आसुर हो, राक्षस हो, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हमारी मर्जी है ना हम भगवान की शरण में जाए या ना जाए, किसी देवता की शरण में जाए, किसी देवी की शरण में जाए, किसी की भी शरण में जाए, ये तो हमारी अपनी मर्जी है। तो फिर भगवान क्यों कह रहे हैं कि वो दुष्ट होते हैं, मूर्ख होते हैं, असुर होते हैं जो मेरी शरण में नहीं आते हैं? क्यों भगवान की शरण में जाना इतना आवश्यक है? हमें भगवान क्यों कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति को दुष्ट क्यों कह रहे हैं, है ना? वो भी तो दुष्ट नहीं होते हैं जो किसी देवी देवता की शरण में जाते हैं, वो भी तो अच्छी तरह से अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। आप आज आपके घर में कोई किसी देवता की भक्ति कर रहा होगा, किसी देवी की भक्ति कर रहा होगा, किसी संत की भक्ति कर रहा होता, इस श्लोक से तो लगता है कि भगवान ने हर एक को दुष्ट कहा है। क्यों कहा है भगवान ने उनको दुष्ट? वो अपने जीवन को सही तरह से गुजार तो रहे हैं और वो किसी न किसी की भक्ति में लगे हुए तो है ना, इससे तो दुष्ट तो वो हुए ना जो कि बिल्कुल किसी की भक्ति ही नहीं करते हैं, नास्तिक हैं, कर वो टेररिस्ट हैं, ये हैं, उनको कहना चाहिए। भगवान ने तो उनको नहीं कहा है, भगवान ने तो जो साधारण हम लोग हैं ना, जिन जो भक्ति की साधना कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की शरण नहीं ग्रहण कर रहे, उनके विषय में कहा। यानी कि जो कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं करता वो दुष्ट है, चाहे वो कितना ही सोफिस्टिकेटेड लाइफ क्यों ना गुजारा हो, चाहे वो सांसारिक दृष्टि से कितना ही सभ्य क्यों नहीं माना जाता हो, कितना ही ज्ञानी क्यों ना माना जाता हो, कितना ही वैज्ञानिक क्यों ना जाना जाता हो, लेकिन यदि वो कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं करता तो वो नराधम है, मूर्ख है, असुर है। ऐसा क्यों कहा भगवान ने? भगवान की शरण ग्रहण करना क्यों इतना आवश्यक है वो हम कल पढ़ेंगे और प्रयास करेंगे कि हमें इस बात को सही तरह से समझ पाए। कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए अवश्य प्रार्थना कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और अपनी साधना को अच्छी तरीके से कर सकूं। हरे कृष्ण।